चौथा स्कंद 28वां अध्याय। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। 31 एकैकस्या भवत्तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदम् भोक्ष्यते यद्वंशधरैर् मही मन्वंतरम परम। परम अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: हे राजा प्राचीन बर्हिषत, मलयध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया और ये सब मनु के अंत तक का तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। तात्पर्य: ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मन्वंतर अर्थात मनु की आयु 71 मल्टीप्लाई में क्या बोलते हैं, गुण 71 गुणा 43 लैक्स वर्ष है। एक मनु के बाद दूसरा मनु आता है। इस प्रकार ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलता रहता है। क्योंकि एक के बाद एक मनु की परंपरा चलती है, अतः कृष्ण भक्ति संप्रदाय चलता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। श्री भगवान उवाच: इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर् इक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा विवस्वान को दी, विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दी। सूर्यदेव विवस्वान ने भगवद गीता एक मनु को प्रदान की और इस मनु ने अपने पुत्र को दिया, जिसने फिर उसे अन्य मनु को प्रदान किया। इस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार कभी रुकता नहीं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन नया है। जैसा कि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत से पुष्टि होती है, यह अत्यंत प्राचीन आंदोलन है, क्योंकि यह एक मनु से दूसरे को हस्तांतरित होता रहा है। वैष्णवों में कुछ व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति संप्रदाय तो आगे बढ़ता ही रहता है। हम देख सकते हैं कि विगत 100 वर्षों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने सुसंबद्ध रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उपदेश कार्य प्रारंभ किया। इनके सारे शिष्य गुरु भाई हैं, और यद्यपि इनमें मतभेद है और वे मिलकर एक साथ काम नहीं करते, किंतु इनमें से प्रत्येक अपनी व्यक्तिगत सत्ता से श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, और विश्व भर में इसे प्रचारित करने के लिए अनेक शिष्य उत्पन्न कर रहा है। जहां तक हमारी बात है, हमने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है, और कई हजार यूरोपीय तथा अमेरिकी इस आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। यह आंदोलन दावाग्नि के समान फैल रहा है। नवदा भक्ति पर आश्रित श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय कभी रुकने वाला नहीं है। यह किसी जाति पाति रंग तथा देश के भेदभाव के बिना आगे बढ़ता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इस श्लोक में भोक्षते शब्द महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, और उसी प्रकार ये सारे भक्त भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते करते हुए संसार भर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। संसार के लोग तथा कथित धार्मिक स्वामियों, योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों से उबे हुए हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आध्यात्मिक पद तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं बता पाता। सारे संसार में भक्ति का प्रचार करने वाले चार दल या संप्रदाय हैं। ये हैं रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय। मध्व गौड़ीय संप्रदाय भगवान चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये सारे भक्त श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यापक प्रचार कर रहे हैं और निर्दोष जनता को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जो छद्म अवतारों, स्वामियों, योगियों तथा बाबाओं से संत्रस्त हैं। अनुवाद दोहराइएगा। हरे कृष्णा। राजा पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बने। राजा विदर्भ राजा की पुत्री अर्थात वैदर्भी हुई। वैदर्भी का विवाह एक बहुत बड़े राजा और भक्त जिनका नाम मलयध्वज सा था, उनके साथ में हुआ। और फिर मलयध्वज राजा और वैदर्भी के कई पुत्र हुए और इन पुत्रों ने भी लाखों लाखों पुत्र उत्पन्न करके आगे ब्रह्मांड को चलाने का कार्य वो चलाया और चलाते आए हैं, ऐसा नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद से कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने यह तात्पर्य में बताया है कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं। भगवान केवल अपने विचार मात्र से ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चला सकते हैं, परंतु उनके हरेक ब्रह्मांड में लाखों लाखों भक्त होते हैं। उन भक्तों को वो अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, इसलिए कोई ना कोई पद बना देते हैं उनके लिए, जिससे कि वो इस प्रकार की सेवा कर सकें। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर भगवान हर चीज करने में पूरी तरह से समर्थ हैं, तो इतने सारे देवी देवता, मनु इत्यादि, इन सबको जन्म देने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो अकेले ब्रह्मांड नहीं चला सकते? तो इसमें इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि अवश्य भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव या कठिन नहीं है, परंतु भगवान अपने भक्तों को शुद्ध करना चाहते हैं। और शुद्ध कैसे होंगे? जब वो भगवान की सेवा में लगेंगे, अपने भक्तों को वो निमित्त बनाना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी कार्य संपन्न करने का यश वो भक्तों के मिले। जैसे कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अकेले ही सारे कुरु सेना को खत्म कर सकते थे, लेकिन वो अर्जुन को यश देना चाहते थे। अर्जुन का गुणगान हो जाए आगे चलकर, सारे आगे चलकर इतिहास में फिर लोग कहें कि ठीक है, अर्जुन जैसे कोई भक्त नहीं हुआ, अर्जुन कितना शक्तिशाली था। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया अपने ही कार्य करने के लिए, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये सारे देवी देवताओं को, मनु को इत्यादि वो नियोजित करते हैं और उनको सेवा में लगाते हैं ब्रह्मांड का कार्य संभालने के लिए। और भगवान ने ये ब्रह्मांड का व्यवस्था का कार्य जो है, व्यवस्थापन, इस प्रकार से किया है सुंदर ढंग से कि नाना अलग अलग जीवों को संधि मिल जाती है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई इस्कॉन, उसमें उन्होंने व्यवस्था बनाई कि ऊपर GBC है, फिर कितने मंदिर हैं, फिर एक प्रेसिडेंट है, फिर उसके और कई जो सेवक होते हैं, और सारे भक्तगण मिलकर सब भगवान का ही कार्य करते हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, लेकिन फिर भी व्यवस्थापन की दृष्टि से देखा जाए तो किसी न किसी को कोई ना कोई पद स्वीकार करना पड़ता है, काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो सारे मनु हैं, देवता हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं, किंतु केवल कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये पद स्वीकार किया है। और हर एक पद स्वीकार करने के लिए कोई ना कोई योग्यता की आवश्यकता होती है। इसलिए इंद्रदेव के पद को प्राप्त करने के लिए उदाहरणार्थ एक ऐसा पुण्य जीव वहां जा सकता है या इंद्र बन सकता है जिसने बहुत ही पुण्य किए हो, जिसने कि 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो। आपको याद होगा पृथु महाराज की कथा ने कि पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे कि इंद्रदेव घबरा गए। इंद्रदेव ने सोचा कि 100वां समाप्त हो जाएगा तो पृथु महाराज इंद्र बन जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा। तो इस प्रकार से इंद्रदेव ने पृथु महाराज के 100वां यज्ञ जो है वो रोक दिया। तो ये हर एक पद को प्राप्त करने के लिए कोई पुण्य चाहिए, कोई योग्यता चाहिए, और ऐसे भगवान चुनते हैं योग्य लोगों को। अभी ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करता है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, चीफ इंजीनियर हैं, मुख्य इंजीनियर, और उनके दिवस में उनके 12 घंटे होते हैं और उनके रात में भी 12 घंटे होते हैं। ब्रह्मा जी पूरे 12 घंटे सोते हैं रात को, और उस निद्रा के समय सारा ब्रह्मांड जो है केवल ऊपर के लोगों के अलावा सब नष्ट हो जाता है, प्रलय जल में सब मिल जाता है। केवल ऊपर के लोग जो हैं, जैसे कि सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, केवल ये रह जाते हैं। लेकिन नीचे के सारे लोग भू भुव स्वर्ग, ये तीनों ही पानी में मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई लोक रहते नहीं, कोई प्राणी रह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की रात जब समाप्त हो जाती है, उनका दिवस शुरू हो जाता है, फिर से 12 घंटे वो जाग जाते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी कभी कभी एक आध बार कभी नींद का झोंका आ जाता है अचानक उनको, बीच के 12 बजे जैसे क्लास में काफी होता है, उनको अचानक बैठे बैठे अचानक नींद आ जाती है। तो ब्रह्मा जी भी अपना कार्य कर रहे होते हैं, अचानक कभी कभी उनको छट करके नींद आ जाती है एक क्षण के लिए। और कभी कभी ऐसे नींद आ जाती है तो कोई असुर उसका फायदा ले लेते हैं, कोई वेद चोरी कर लेते हैं इत्यादि। जैसे एक बार हयग्रीव नाम के एक असुर ने वेदों को चोरी कर लिया, ब्रह्मा जी को अचानक नींद आ गई, सो गए, तो उसने चोरी कर ली, फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा, फिर हयग्रीव नाम के असुर को का वध करना पड़ा। अब भगवान का एक अवतार भी है जिसका नाम है हयग्रीव, और असुर का एक नाम भी है हयग्रीव, अलग अलग है। तो खैर इस प्रकार से ब्रह्मा जी का दिवस 12 घंटे का होता है, और ये 12 घंटे ब्रह्मा जी के बहुत लंबे हैं हमारे दृष्टि से देखा जाए तो। हमारे पृथ्वी लोक के दृष्टि से एक कलयुग 4,32,000 वर्ष लंबा होता है, और द्वापर युग इससे दुगना, त्रेता युग कली से तिगना बोलते हैं ना, तिगना, और सत्ययुग इससे चौगुना। तो कुल मिलाकर ये 4 युग जिसको एक चतुर्युग कहते हैं, ये कलयुग का 10 गुना ज्यादा इसकी अवधि होती है, तो इसको एक चतुर्युग कहते हैं। मतलब 4 युग लगातार, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, और ये एक चतुर्युग जो है ये बार बार दोहराया जाता है, दोहराते रहता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, ऐसे एक चतुर्युग जब 1,000 बार ये होता रहता है तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिवस। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, या ब्रह्मा जी का 12 जो दिवस है कितना लंबा होता है। तो ब्रह्मा जी के दिन के समय या दिवस में 12 घंटे में 14 मनु होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के अलावा और कोई इतना लंबे समय जी नहीं सकता है। तो उनके जीवन की अवधि के हिसाब से ब्रह्मा जी ने ये एक सिस्टम बनाई है कि 12 मनु होंगे, और उनकी जीवन की अवधि इसको मनवंतर कहा जाता है। तो 14 मनु होते हैं एक ब्रह्मा जी के दिवस में। ब्रह्मा जी के दिवस में 1000 चतुर्युग होते हैं, मतलब एक मनु 71 चतुर्युग लंबा जीता है। मतलब अभी ये जो सत्य त्रेता द्वापर कली जब 71 बार घूमेगा बार बार, तब एक मनवंतर होगा। ये एक मनु की जीवन की अवधि है। और ऐसे फिर दूसरा मनु, तीसरे मनु आएंगे, चौथे आएंगे, ऐसे 14 मनु हो जाएंगे, ब्रह्मा जी का एक दिवस हो जाएगा। और ऐसे ब्रह्मा जी की एक रात, फिर से एक दिवस, ऐसे ब्रह्मा जी के एक साल हो जाएगा, फिर उनके 100 साल हो जाएंगे, फिर ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, फिर ब्रह्मा जी भी मर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के एक दिवस में ये जो 14 मनु हैं, ये हर एक मनु के समय, हर एक मनवंतर में देवी देवता वो नए चुने जाते हैं। समझ लीजिए कि चुनाव का समय है, जब मंत्री सब बदल जाते हैं, और मंत्री जब आते हैं नए तो क्या करते हैं, वो DC को बदल डालते हैं, पुलिस वालों को बदल डालते हैं, इधर से उधर अपने आदमी बिठा देते हैं, है ना, जिसको जैसे चाहिए वैसे आदमी बिठा देता है। तो उसी प्रकार से हर एक मनु के समय एक भगवान के अवतार होते हैं, हर एक मनवंतर में। मतलब इनको युगावतार, इनको मनवंतर अवतार कहते हैं। मनवंतर अवतार मतलब जो हर एक मनु के समय जो अवतार आएंगे उनको मनवंतर अवतार कहते हैं। मनु भी खुद स्वयं शक्यावेश अवतार माने जाते हैं, लेकिन हर एक मनु के समय एक भगवान के अवतार अवश्य आते हैं। उनका काम क्या होता है? सबसे पहले वो मनु, वो जो अवतार हैं, मनु को चुनते हैं कि मनु कौन बनेगा, फिर मनु को अपने जगह में बिठाते हैं, और फिर मनु को प्रेरित करते हैं, मनु का कार्य क्या होना चाहिए, फिर मनु अपने कार्य करते हैं। मनु का कार्य ये है धर्म की स्थापना करना उस मनवंतर में, क्योंकि 71 चतुर्युग बीत जाते हैं और पुनः फिर धर्म की संस्थापना करने की आवश्यकता हो जाती है। फिर मनु अपने पुत्रों के द्वारा और पौत्रों के द्वारा और अपने अन्य वंशजों के द्वारा धर्म की संस्थापना या सारे ब्रह्मांड के व्यवस्थापन जो है वो देखते हैं। और वेदों का प्रचार करने के लिए 7 ऋषि आते हैं, सप्तर्षि। ये 7 ऋषि हैं, ये भी बदलते रहते हैं हर मनवंतर में। तो ये भगवान के अवतार जो होते हैं, मनवंतर अवतार, ये उनको चुनते हैं, 7 ऋषि कौन बनेंगे, मनु कौन बनेंगे। और इसके अलावा जो देवता है उनको भी यज्ञ, ये जो अवतार है वो चुनते हैं। तो हर मनवंतर में ये देवता के पद अलग अलग जीवों को मिलते हैं। इंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव, ये सब अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग जीव बन जाते हैं। और इस प्रकार से सारा कार्य ब्रह्मांड का चलता है। ये सप्तऋषि वेदों का प्रचार करते हैं, देवी देवतागण ब्रह्मांड का व्यवस्थापन देखते हैं, और इस प्रकार से सारा कार्य आगे चलता रहता है। तो सबसे पहला मनवंतर और या सबसे पहले मनु ब्रह्मा जी के इस दिवस में वो कौन थे? सबसे पहले मनु इस दिवस के, कितने बार हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, रविवार के क्लास में भी हम काफी चर्चा कर चुके जी, स्वयंभू मनु, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी का और एक नाम है स्वयंभू, क्योंकि स्वयं उनका जन्म हुआ कमल पुष्प के ऊपर, उनके कोई माता पिता नहीं थे, स्वयं भगवान से उनका जन्म हुआ। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल पुष्प के ऊपर उनका जन्म हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं। और स्वयंभू के पुत्र स्वयंभू, तो ये हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु सबसे पहले मनु थे। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, कौन थे? रविवार को आप कितने अच्छी तरह से सुने हैं इसकी परीक्षा, है? महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद के 2 पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। और फिर ध्रुव के वंश, ध्रुव का वंश आगे चलता गया, और उधर बाद में सब वंश समाप्त हो गया तो प्रियव्रत महाराज आए। प्रियव्रत महाराज दूसरे पुत्र थे स्वयंभू मनु के, और उनकी तीन कन्याएं थीं, पुत्री थी। कौन? स्वयंभू मनु के अंबिका, देवहूति, आहुति, प्रसूति। बहुत अच्छा। और इनके वंश का भी वर्णन श्रीमद् भागवत में कर चुके हैं। वास्तव में बड़ा चार्ट बनाना चाहते थे दो तीन, लेकिन समय नहीं मिला। 10-20% करके जल्दी जल्दी में यह कभी आपको सारे चार्ट में अच्छी तरह से पूरा दिखा के किससे वंशावली कैसे चलती आई, फिर मनवंतर कैसे हुए, हर मनवंतर में कौन से 7 ऋषि हैं, 14 मनवंतर के, इसमें देवता कौन बने, इंद्र कौन बने, सप्तऋषि कौन बने, भगवान के अवतार कौन थे, आप सब जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वैसे नोटबुक खाते वगैरह लेकर आपको फिर लिखना चाहिए। इसके लिए अलग से क्लास करेंगे। तो ये वंशावली साधारण वंशावली नहीं है, क्योंकि भगवान की वंशावली है। और इस प्रकार से कैसे भगवान ने व्यवस्था की है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो स्वयंभू मनु ये पहले मनु बने, और इनके बाद में दूसरे मनु हुए, किसी को मालूम है? स्वारोचिष। स्वारोचिष ये अग्निदेव के पुत्र थे। फिर उनके समय में भी अलग अलग देवता हुए, और इंद्रदेव भी चुने गए, रोचन उनका नाम था, सप्तऋषि भी बने, और इनके बाद में उत्तम मनु बने। अब प्रियव्रत महाराज के कई पुत्र थे। एक का नाम था आग्निध्र, जिनसे कि आगे चल के वंशावली चलती गई, महाराज ऋषभदेव उस वंश में आए। लेकिन महाराज प्रियव्रत के और भी तीन पुत्र थे, जिनका नाम था उत्तम, तामस और रैवत। तो तीसरे मनु बने ये पुत्र प्रियव्रत महाराज के, जिनका नाम था उत्तम। फिर उत्तम के बाद में उनके भाई मनु बने, जिनका नाम था तामस, और उनके बाद में और एक बने जो उनके भाई थे, रैवत। तो कितने हुए? 5 मनु हो गए। तो 5 मनु एक के बाद एक चलते गए, और हर एक मनु के समय अलग अलग व्यक्ति इंद्र बने, अलग अलग जीवों को देवताओं का पद मिला, अलग अलग ऋषि वो सप्तऋषि बने, और इस प्रकार से 5 मनवंतर बीत गए। फिर आया 6ठा मनवंतर। 6ठे मनवंतर में कौन मनु बने? चक्षु राजा के पुत्र, जिनका नाम था चाक्षुष मनु, ये 6ठे मनवंतर बने। और ये जो चक्षु राजा है या चाक्षुष मनु है, ये ध्रुव महाराज के वंशावली में आए। और फिर 6ठे मनवंतर के समय उनके अंत में एक राजा थे, जिनका नाम था सत्यव्रत राजा, जिनको बचाने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया। कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार, प्रलय जल से उनको बचाया। और फिर यही जो सत्यव्रत राजा है, जो कि चक्षुष मनु के मनवंतर में राजा सत्यव्रत हुए थे, वो 7वें मनवंतर में मनु बने। उनका नाम है विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, जिनका नाम है श्राद्ध देव। तो अगले जन्म में उनको मनु का पद मिला। तो ये चाक्षुष मनु ने भगवान मत्स्य और वरह दोनों आए, और स्वयंभू मनु में भी ये 2 अवतार आए। वैसे साधारणतः भगवान का हरेक अवतार ब्रह्मा जी के 1 दिवस में 1 बार आता है, लेकिन कभी कभी भगवान को इमरजेंसी में भी प्राकट्य कर देते हैं। अचानक कोई जरूरी काम हो जाता है तो 1 से ज्यादा बार भी आ सकते हैं। जैसे मत्स्य अवतार, वरह अवतार ब्रह्मा जी के इसी दिवस में 2 बार आ चुके हैं अब तक। मत्स्य अवतार 2 बार आ चुके हैं स्वयंभू मनु के समय, चक्षुष मनु के समय, और मत्स्य अवतार भी आ चुके हैं। तो इस प्रकार से 7वें मनवंतर में जो चक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत राजा थे, अभी विवस्वान या सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु बने जिनका नाम है श्राद्धदेव। और ये श्राद्धदेव आज भी मनु है क्योंकि ये सातवां मनवंतर चल रहा है। हर एक मनवंतर में कितने चतुर्योग? 71, 71 को 71 बोलते हैं ना, 71। तो 71 मन जो चतुर्युग हैं सातवें मनवंतर के, उसमें से ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो इसलिए ये जो हमारे मनु हैं वैवस्वत मनु, अभी तक उनका आधा जीवन भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तक जवान है काफी। और सूर्यदेव विवस्वान, इनकी तीन रानियां थी। एक रानी थी सम्या, सम्या के तीन संतान हुए, उनमें से एक थे श्राद्धदेव जो आगे चल के मनु बने बड़े होकर, जो आज भी मनु हैं, और उनके भी एक पुत्र हुए और एक पुत्री। पुत्र का नाम था यम, जी हाँ वही यमराज, और उनकी बहन का नाम था, यार यमराज की बहन का नाम यमी अर्थात यमुना। यमुना नदी जो है वो यमराज की बहन है और मनु के भी बहन, तो ये तीन भाई बहन हुए, यमुना जी, यमराज और श्राद्धदेव जो कि मनु है इस समय। और उनकी जो पत्नी थी और एक, उनसे दो अश्विनी कुमार आए जो देवताओं के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। तो इस प्रकार से ये सारी वंशावली चली। अभी भी सातवां मनवंतर चल रहा है और उसमें सप्तऋषि जो हैं ये अलग अलग हैं, जैसे कि वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि जो भी ऋषि हैं, ये बदलते रहते हैं। और 71 चतुर्युग होने तक वैवस्वत मनु यहीं पर रहेंगे। और आगे विवस्वान की और एक पत्नी है छाया, छाया के पुत्रों में से एक पुत्र है सावर्णी, ये 8वें मनु बनेंगे, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं अपने स्थान में। कई करोड़ों करोड़ों साल बीत जाते हैं एक मनु एक मनवंतर को समाप्त होने तक, लेकिन बाद वाले मनु तैयारी में बैठे रहते हैं। और इस प्रकार से 8वें मनु होने वाले हैं सावर्णी। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में न केवल इतिहास का वर्णन किया है कि इतने मनु हुए, उनकी वंशावली ऐसे हुई, लेकिन भविष्यवाणी भी उन्होंने की है कि भविष्य में आने वाले अभी 7 मनु कौन होंगे। तो 8वें मनु का वर्णन उन्होंने कर दिया कि ये होंगे सावर्णी, फिर उनके बाद में आएंगे दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी और इंद्र सावर्णी। तो ऐसे ये 7 मनु और आएंगे बाद में। तो इस प्रकार से पूरी तरह से 14 मनु हो जाएंगे। और ये भी वर्णन किया है कि कौन यह मनु बनेगा, कौन इंद्र बनेगा इत्यादि। अब अगले मनवंतर में जबकि सावर्णी मनु बनेंगे, उस समय बलि महाराज इंद्र बनेंगे। इस समय हमारे मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम कोई जानता है? इंद्र तो पद है ना, जैसे मनु पद है, जैसे अभी जो वैवस्वत मनु हैं उनका नाम है श्राद्धदेव। वैवस्वत इसलिए कहते हैं कि वो विवस्वान के पुत्र हैं, इसलिए वैवस्वत मनु, लेकिन उनका नाम है श्राद्धदेव। उसी प्रकार इंद्र एक पद है, जैसे मंत्री एक पद है, तो उनका नाम है पुरंदर। और पुरंदर के बाद में जो इंद्र होंगे अगले मनवंतर में, वो होंगे बलि महाराज। बलि महाराज की कथा, जबकि वामन देव ने उनके ऊपर कृपा की थी, वो तो कई साल पुराने। वामन देव इस 7वें मनवंतर के लिए अवतार है, मनवंतर अवतार है। जैसे कि स्वयंभू मनु के समय जो मनवंतर अवतार थे वो स्वयंभू मनु के पुत्र थे जिनका नाम था यज्ञ, और यही यज्ञ उस मनवंतर में इंद्र भी बने। जब कोई योग्य जीव नहीं मिलता इंद्र के पद को बैठ के स्वीकार करने के लिए, तब भगवान को स्वयं इंद्र बनना पड़ता है। क्योंकि और कोई है नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से इस मन्वंतर में वामन देव मन्वंतर अवतार है और उन्होंने देवताओं को बचाया, पुरंदर को बचाया बलि महाराज से, और बलि महाराज के ऊपर बहुत कृपा की बचाते बचाते इंद्र को, बल्कि इंद्र से ज्यादा बलि महाराज के ऊपर ज्यादा कृपा हुई और बलि महाराज को एक बहुत महान लोक प्राप्त हुआ। हालांकि वो निम्न श्रेणी का है, सुतल लोक, जहां भगवान उनके द्वारपाल बने हैं, और ऐसा ऐश्वर्य है उस लोक में जो कि इंद्रलोक में भी नहीं है। तो बलि महाराज आज भी वहां पर हैं, वहां राज कर रहे हैं, और पुरंदर स्वर्ग लोक में इंद्रलोक में राज कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में जब सावर्णी मन्वंतर शुरू हो जाएगा तो उस समय जो भगवान के अवतार होंगे वो पुरंदर से राज इंद्रदेव का राज छीन कर वो बलि महाराज को देंगे और बलि महाराज को इंद्र बनाकर उस राजगद्दी में स्वर्गलोक में बिठाएंगे। हालांकि बलि महाराज एक दैत्य परिवार में जन्म लिए थे। वैसे भी कल बलि महाराज की पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा के दिन बलि दैत्यराज, हमारे वैष्णव दिन दर्शिका में आप पढ़ेंगे बलि पूजा, बलि महाराज की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से बलि महाराज इंद्र बन जाएंगे और ऐसे अनेक अनेक जो ऋषि मुनि हैं वो सप्त ऋषि बन जाएंगे और ऐसे चलते रहता है। तो ऐसे 14 मनवंतर चलते हैं। देखिए भगवान की संस्थापना, भगवान की व्यवस्थापन कैसे है। तो इस प्रकार से 14 मनु हर एक अपने अपने मनवंतर में देखभाल करते हैं सारे ब्रह्मांड में, सब धर्म का पालन चल रहा है ना, सब जगह अपने राजा है ना, हर एक लोक में अपने अपने अधिष्ठाता कोई राजा है नहीं है, वो सब देखते हैं, उनका काम है, और फिर उनके पुत्र पौत्र इत्यादि ये आगे चल के काम संभालते हैं। तो ये मनु ज़्यादातर क्षत्रिय होते हैं और इनके वंश में जो गीता का उपदेश, भागवत का उपदेश, भगवत उपदेश चलता रहता है। जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव, और सूर्यदेव ने आगे चल के उनके पुत्र को दिया जो मनु है, मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु ने आगे चल के वंश में ये ज्ञान प्रदान किया। तो इस प्रकार से राज ऋषियों की परंपरा में भी ये ज्ञान चलते आया। लेकिन इसके अलावा और एक परंपरा भी है और वो है भक्तों की परंपरा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार से मनुओं का राज चलते रहता है, एक मनु दूसरे मनु को देता है, दूसरे तीसरे को, ऐसे चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से संतों की परंपरा, भक्तों की परंपरा भी होती है, जिससे कि भगवत ज्ञान या भगवत परंपरा हमेशा विद्यमान रहता है। कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ है और न होगा जबकि कोई भी ज्ञान प्रदान करने के लिए यहां भौतिक ब्रह्मांड में नहीं होगा। अगर किसी की तीव्र इच्छा है तो भगवान उसके लिए कोई न कोई योग्य व्यक्ति भेज देंगे। तो यहां ऐसे उपस्थित हमेशा भक्त रहेंगे, चाहे वो कहीं हिमालय में हो या कहीं भी हो या शहर में हो, ये भक्तों की परंपरा चलती रहती है। कभी कभी राज ऋषियों की परंपरा टूट भी जाती है, जैसे कि भगवान ने कहा समया एवातेद्यम योग प्रोक्त पुरातन, भक्तों से मैं सखा चेती रहस्य उत्तम, कि ये जो सकाले ने है महता योग नष्ट है परंतप, ये ज्ञान ये परंपरा नष्ट हो चुकी और इसीलिए मैं पुनः इस परंपरा को स्थापित कर रहा हूँ और तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे सखा हो। तो इस प्रकार से हालांकि कभी कभी राज ऋषियों की परंपरा टूट भी जाती है, लेकिन भक्तों की परंपरा कभी टूटती नहीं है। कम से कम एक परंपरा तो रहेगी, कम से कम एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आज हैं, आज कितने सारे परंपराएं हैं, 4 संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय, और इन 4 संप्रदायों में हर एक संप्रदाय में कितने सारे परंपराएं हैं। जैसे हमारी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में कितने सारे परंपराएं हैं। केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद में उनके शिष्यों ने अपनी अपनी परंपरा शुरू की, जैसे कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की परंपरा है, वो आज चलती आई, वो इस्कॉन है। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, उनके गुरु भाइयों ने अपनी परंपरा शुरू की और उनके शिष्य हैं, आगे चल के उनके होंगे। इस प्रकार से भक्तों की परंपरा वो बढ़ती जाती है। जैसे एक पेड़ है, उसके शाखाएं हैं, शाखाओं के उपशाखाएं हैं, ऐसे विस्तार होते रहता है। लेकिन इन सब का जड़ श्री कृष्ण है। इस प्रकार से एक जड़ ने भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने ऐसी अच्छी व्यवस्था की है हम सबके लिए, ताकि हम भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम प्राप्त करके उनके धाम में लौट कर वापस जा सकें।